मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 16 जनवरी 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज हम लोग सीधे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आएं और उस पर बात करें। इसे आप आज का मुख्य विषय कह सकते हैं और वह विषय है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग पर हम लोग थोड़ी सी बेसिक बातें करेंगे और उन बातों को जानने की कोशिश करेंगे जो प्री एग्जामिनेशन और मेन एग्जामिनेशन दोनों ही दृष्टियों से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इस तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि इस विषय पर आपकी जो समझ है वह डेवलप हो जाए, या यूं कह लीजिए कि इस विषय पर आपकी पकड़ बन जाए, और इस तरह से पकड़ बन जाए कि यदि कोई ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है जिसे आपने पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, समझा भी नहीं है, इसके बावजूद आप उसे पूरे दावे के साथ, आत्मविश्वास के साथ हल करने की स्थिति में आ गए हैं। ऐसा होता है और इनफैक्ट सच यह है कि ऐसा होना भी चाहिए, बल्कि यूं कह लीजिए कि ऐसा ही होना चाहिए। तो दोस्तों यह विषय है ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वैश्विक तापन। तापन यहां तापमान नहीं है, वैश्विक तापमान नहीं है, वैश्विक तापन। दरअसल इस विषय के बारे में मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ महीनों से आप एक तमाशा देख रहे हैं, प्रकृति के आक्रोश को आप महसूस कर रहे हैं। संवेदना के स्तर पर तो कम से कम महसूस कर ही रहे हैं, क्योंकि जो ये घटना घटित हुई है ये हमसे काफी दूर घटित हुई है। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लग गई, हाहाकार मचा था। ब्राजील के अमेजन के वन जल रहे थे, कितने लंबे समय तक वो वन जलते रहे, वर्षा वन। सोचिए कि रेन फॉरेस्ट, वर्षा वन, ऐसे वन जो वर्षा से पैदा हुए हैं, वर्षा पर आधारित हैं, वर्षा के कारण इतने बड़े हुए हैं, इतने सघन हुए हैं, और वर्षा वन जल रहे हैं। मरुस्थल के वन जले तो समझ में आए, मरुस्थल में तो वन ही नहीं होते, लेकिन वर्षा वन जल रहे हैं। और इसके बाद अभी की घटना आपको मालूम है, ऑस्ट्रेलिया के जंगल, ऑस्ट्रेलिया के जंगल जल रहे हैं, भयानक रूप से जल रहे हैं। करोड़ों हेक्टेयर, लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर ऑस्ट्रेलिया के वनों का नष्ट हो गया है। कहा जाता है कि 50 करोड़ जीव जंतु प्राणी जलकर नष्ट हो गए, और पता नहीं कितनी स्पीसीज तो ऐसी हैं जो एक तरीके से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई है। ऊपर उत्तर की तरफ कैलिफोर्निया के जंगल, इसके बाद आप दक्षिण की तरफ आ जाइए तो फिर ब्राजील के वन, और फिर आप साउथ ग्लोब में आ जाइए इधर तो फिर ऑस्ट्रेलिया के जंगल, ये जंगल जल रहे हैं। और अभी तो ऑस्ट्रेलिया के जंगल पर नियंत्रण भी नहीं पाया जा सका है, और आपको मालूम है भूगोल में आपने पढ़ा होगा कि खासकर जो जनवरी और फरवरी का महीना होता है ये तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के दिनों का महीना होता है। मतलब ऐसा नहीं कि वहां ठंड पड़ेगी तो थोड़ी सी संभावना है कि जो आग है वो मध्यम पड़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं वर्षा के दिन आने वाले हैं कि आग बुझ जाएगी, देखते हैं कि क्या होता है, सच पूछिए तो इतनी जल्दी जल्दी इन तीन वनों में लगे हुए इतने विशाल आग के गोलों ने, आग की लपलपाती हुई लपटों ने पूरी दुनिया को बहुत गंभीर रूप से चिंतित कर दिया है। तो अगर ये घटना इतनी संवेदनशील है, गंभीर है, वैश्विक है, तो सीधी सी बात है कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसीलिए मित्रों मैंने इस विषय को मुख्य विषय के तहत चुना है, ग्लोबल वार्मिंग। तो आइए इसे थोड़ा सा मूलभूत रूप में जानने की कोशिश करते हैं। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, जैसा कि मैंने कहा, हिंदी में इसे कहा जाता है वैश्विक तापन, यानी कि पूरे के पूरे विश्व का तापमान बढ़ रहा है, यह हो गया वैश्विक तापन। तो इनफैक्ट इसे अगर हम पारिभाषिक रूप में कहना चाहें तो साइंटिफिक तरीके से तो आप कह सकते हैं कि पृथ्वी के निकट के वातावरण, अगर वैश्विक तापमान तापन की हम बात कर रहे हैं तो हम अंतरिक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने प्रभाव की बात कर रहे हैं, जिसका प्रभाव इस पृथ्वी पर पड़ रहा है, पृथ्वी के वातावरण पर पड़ रहा है, और पृथ्वी पर रहने वाले सब पर पड़ रहा है, चाहे वो प्रकृति हो, जीव जंतु हो, वनस्पति हो, सब पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए जब हम वैश्विक तापन की बात करते हैं तो, यानी कि इसमें शब्द है विश्व, तो आपको यह बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए, आपके दिमाग में दर्ज होनी चाहिए कि यह जो तापन है इसका संबंध पृथ्वी के निकट के वातावरण से है, कि जो पृथ्वी के निकट का जो वातावरण है उसका जो औसत तापमान होना चाहिए उस औसत तापमान से वह तापमान अधिक हो गया है, होने की संभावना है, धीरे धीरे अधिक हो रहा है, और अगर यही स्थिति रही तो वैश्विक तापन और अधिक बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यह है वैश्विक तापन, यानी कि पृथ्वी के निकट के वातावरण के औसत तापमान में होने वाली वृद्धि को वैश्विक तापन कहते हैं। राइट, ये आपके जनरल स्टडीज मेंस का जो थर्ड पेपर है उसका टॉपिक है, बकायदे जो आप कह लीजिए एनवायरमेंट से रिलेटेड आप जाएंगे तो आपको डिटेल में, हालांकि एक लाइन ही है, पढ़ने को मिल जाएगी, और प्री में भी ये बकायदे दिया हुआ है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम एनवायरमेंट के सिलेबस को लेकर के फ्रेंड्स यह है कि उसमें डिटेल्स नहीं दी हुई है, बिल्कुल भी डिटेल्स नहीं दी हुई है, केवल यह कि साहब ये हमारा जो पर्यावरण है डिग्रेड हो रहा है, इसका आप कह लीजिए कि विनाश हो रहा है, इसकी कैसे रक्षा की जाए, इसका कैसे मूल्यांकन किया जाए, बस ये कह करके छोड़ दिया गया है। जबकि सच पूछिए तो जब हम इसके सिलेबस की बात करते हैं तो इसका सिलेबस कुछ पेंडोरा बॉक्स की तरह है, पेंडोरा बॉक्स की तरफ है कि लगता है कि आपको एक बक्सा है, आप उसको खोलते हैं तो उसके अंदर फिर से दूसरा निकल जाता है, उसको खोलते हैं तो फिर तीसरा निकल जाता है, और इस तरह से टॉपिक पर टॉपिक निकलते चले जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक कोई गलत तरीके से निकल रहे हैं, जब आप अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखते हैं, चाहे प्री के हों या मेन्स के, तो पता लगता है कि नहीं, ये जो बॉक्स पर बॉक्स निकलते चले जा रहे हैं बिल्कुल सही है, ये झूठे नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन में इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, जब हम एनवायरनमेंट के सिलेबस की बात करते हैं या जो वैश्विक तापन की बात करते हैं तो यहां हमारे दिमाग में इसके तीन डायमेंशंस बहुत क्लियर होने चाहिए और इनमें अंतर भी स्पष्ट रहना चाहिए। थ्री डायमेंशंस की मैं बात कर रहा हूं केवल आपको समझाने के लिए। पहला इसका जो डायमेंशन है एनवायरमेंट का वह है पर्यावरण प्रदूषण, राइट, जिसे आप कहते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण, यह इसका एक पार्ट है, एक सेपरेट पार्ट है। नो डाउट कि जो रीजन है वैश्विक तापन का वो पर्यावरण प्रदूषण ही है, तो ये सबसे बड़ा हिस्सा है पर्यावरण प्रदूषण। अब इस पर्यावरण प्रदूषण के बाद जो हम सेकेंड स्टेज पर आते हैं तो वह हो जाता है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, ये भी आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रदूषण के कारण जो असर हो रहा है वो बायोडाइवर्सिटी पर हो रहा है, हमारी जो जैव विविधता है वो नष्ट हो रही है, तो ये एक सेपरेट हिस्सा है और इसका भी रीजन पर्यावरण प्रदूषण ही है। और फिर हम आते हैं अपने ग्लोबल वार्मिंग पर, कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है यह भी उस पर्यावरण प्रदूषण के ही कारण है। लेकिन अब देखिए कि अंतर क्या हुआ, जो पर्यावरण में जो प्रदूषण फैल रहा है, पर्यावरण में प्रदूषण की जब हम बात करते हैं तो हवा में भी प्रदूषण है, पानी में भी प्रदूषण है, मिट्टी में भी प्रदूषण है, हर तरफ हम प्रदूषण प्रदूषण देख रहे हैं, फिर ध्वनि प्रदूषण है, दुनिया भर के प्रदूषण है, तो ये तो एक मेजर हिस्सा हो गया। अब इसके जो प्रभाव हो रहे हैं वे ये दोनों अलग अलग हिस्सों में हैं। बायोडायवर्सिटी पर जो इसका इंपैक्ट हो रहा है तो हम जैव विविधता को पढ़ते हैं, उस पर भी प्रदूषण का ही प्रभाव है, और हम जो वैश्विक तापमान को जो पढ़ रहे हैं, वैश्विक तापन को, वह भी प्रदूषण के कारण ही है। अब यह बात अलग है कि जो जैव विविधता का प्रदूषण है या जैव विविधता के सामने जो संकट है उसका कारण मृदा प्रदूषण भी है, उसका कारण जल प्रदूषण भी है, उसके और भी दूसरे दूसरे कारण हैं। और जब हम वैश्विक तापन की बात करते हैं तो इसमें प्रदूषण के दूसरे कारण तो हैं, लेकिन जो प्रमुख कारण है वह हो जाता है हरित गैस, ग्रीन हाउस गैसेस, जिसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा, सुना भी होगा, हरित गैसेस, राइट। तो अब आप देखें कि ये जो प्रदूषण है जो खासकर वैश्विक तापन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा टॉपिक है वैश्विक तापन, वो क्या है। अक्सर आपको दो तीन बातें वैश्विक तापन के संदर्भ में पढ़ने को मिलती होंगी, एक अभी मैंने ग्रीन हाउस गैस की बातें की, दूसरी जो आपको शब्द जो दूसरा मिलता होगा वो है औद्योगिक पूर्व, एक शब्द मिलता होगा औद्योगिक पूर्व, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन और पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसे आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये बहुत ही बेसिक अवधारणाएं हैं। प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन को अगर आप सन के हिसाब से देखें तो 1750 के आसपास, आपको मालूम है कि जो औद्योगिक क्रांति हुई है वो 1750 के आसपास हुई है, और औद्योगिक क्रांति का कारण वैज्ञानिक आविष्कार रहे। तो 1750 से पहले जो प्रकृति की स्थिति थी, जो प्राकृतिक वातावरण की स्थिति थी, वो अपने आप में सफिशियंट थी, मतलब वो सेल्फ तरीके से ही वो अपने को डेवलप करती थी, है ना। प्रकृति में मानव का हस्तक्षेप तो था, लेकिन इतना हस्तक्षेप नहीं था। यहां हम देख रहे हैं कि जो वैश्विक तापमान है वो बेसिकली मानवीय हस्तक्षेप के कारण है, प्रदूषण मानवीय हस्तक्षेप के कारण बढ़ा है। और ये जो मानवीय हस्तक्षेप किसके कारण बढ़ा है, तो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन इरा में मानवीय हस्तक्षेप नहीं था। हम खेती कर रहे हैं, हम पशुचारण कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर घूम रहे हैं, ठीक है, जो हम थोड़ा बहुत हस्तक्षेप कर भी रहे हैं, पानी को भी गंदा कर रहे हैं, मिट्टी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जंगल भी थोड़े बहुत कट रहे हैं, तो उतना प्रकृति बर्दाश्त कर लेती थी, उसको मैच कर लेती थी। लेकिन क्या हुआ आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, मानव का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ गया, जरूरत से ज्यादा बढ़ गया। हमने इंडस्ट्री लगा ली, दुनिया भर का धुआं निकल रहा है, आज आबादी बढ़ने लगी, इंडस्ट्री के लिए हमें जगह चाहिए, तो हम जंगलों को काटने लगे, तो निर्वनीकरण की स्थिति आ गई, जंगल हमारे कटने लगे, जमीन सुनसान होने लगी, यूं कह लीजिए कि हरेपन से खाली होने लगी, सुनसान होने की सेंस में लीजिए आप यहां। फिर हमने धीरे धीरे वैज्ञानिक आविष्कार करने शुरू किए, वैज्ञानिक आविष्कार ने आदमी को इतना शक्तिशाली बना दिया कि वो कुछ भी कर सकता है, आसमान में हम उड़ने लगे तो हवाई जहाज पोल्यूशन करने लगे, हम समुद्र में टैंक चलने लगे तो हमारे जो जहाज हैं समुद्री जहाज पानी तेलों के टैंकर ले लेके जा रहे हैं, टैंकर से तेल रिसने लगा तो हमारे समुद्र जो है वो दुनिया भर के प्रदूषित होने लगे, जनसंख्या बढ़ गई तो उनके रहने के लिए मकान की जरूरत है, तो पता लगा उसके लिए हम जंगल काट रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप जनसंख्या बढ़ रही है तो आपको उनका पेट भरने के लिए अधिक अनाज की जरूरत है, तो पता लगा कि अनाज के लिए आपको खेती करनी है, खेती में ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करना है, तो आप रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने लगे, तो पता लगा कि रासायनिक उर्वरक के कारण जो मृदा है वो ऊसर होती चली जा रही है, भूमि का क्षरण बढ़ता चला जा रहा है, और भूमि जो है CO2 को सोखने वाला एक बहुत बड़ा आधार होता है, तो पता लगा कि उसकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आपके दिमाग में, देखिए यह बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जब भी हम वैश्विक तापमान की बात करते हैं तो उसका संबंध होता है प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड और पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड। यह आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट होना चाहिए कि यह बात क्यों की जाती है, क्यों कही जाती है। तो मित्रों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। कल में हम लोग फिर वैश्विक तापन में जो हरित गैस है वो क्या है, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। अब मैं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूँ। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।